इस बार के पॉडकास्ट में बात करूंगी कि इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के समय कैसी थी और अंग्रेज़ों ने इसको नीचे करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इसको यूज़ करने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए। और फिर इंडिपेंडेंस के बाद मीन्स 1947 के बाद हमारे गवर्नमेंट द्वारा हमारी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ अपनाई गई और इसका हमारे इकोनॉमी में क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा और इसके क्या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हुए। इन सब के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ब्रिटिशर्स आखिर इंडिया में किस तरह आए। तो बात उस समय की है जब लंदन के कुछ व्यक्तियों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने शुरुआती दिनों में इतना मुनाफा नहीं कमा रही थी, इसकी वजह से एलिजाबेथ ने उनको और फंड देने से मना कर दिया। तो वहीं का एक व्यापारी जिसका नाम हॉकिंस था, वो इंडिया में आया। वह सूरत जो बंदरगाह है उसके द्वारा आया, जो कि उस समय का बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था, और वहाँ से जो मेन मेन ट्रेड थे भारत के वो वहीं से हुआ करते थे। उस समय हमारे देश पे मुग़लों का राज था और उस समय के जो राजा थे जिनका नाम जहांगीर था, वो बहुत दयालु किस्म के हुआ करते थे और बहुत भोले भाले थे। उनको इतनी नॉलेज नहीं थी बाहर की दुनिया के बारे में और ना इंग्लिश की इतनी नॉलेज थी। तो जब हॉकिंस आया तो जहांगीर को ये समझ नहीं आया कि वो किस इरादे से हमारे इंडिया में आया है। तो जहांगीर ने उनकी बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी की और धीरे धीरे हॉकिंस जो था वो जहांगीर के कान भरने शुरू कर देता है और वो धीरे धीरे हमारे इंडिया पे एक से दो ऐसे ऐसे कर करके कारखाने खुलने के लिए जहांगीर को बोलता है और जहांगीर उनकी बात मानना शुरू कर देता है। तो थॉमस जो उन्हीं का एक साथी था वो इंडिया में आता है, हॉकिंस बोलता है जहांगीर को, उसको आने की परमिशन मांगता है, तो जहांगीर हाँ कर देता है। और थॉमस बहुत चंट किस्म का इंसान था, वो एलिजाबेथ के बहुत करीबों जो करीबी लोग होते उसमें से आता था। तो उसने उसने भी जहांगीर को अपने शिकंजे में लाने के लिए बहुत सी चालें चली। तो उसमें से एक चाल ये थी कि उसने एक लाइसेंस जिसका नाम था ट्रेड लाइसेंस, उसका मतलब ये होता है कि व्यापार करने की अनुमति देने के लिए लाइसेंस, बट उस समय ट्रेड का मतलब था लूटमार, जो कि जहांगीर को नहीं पता था कि ट्रेड का मतलब ये है। तो वहीं का एक दरबारी होता है जो बहुत ट्रस्टेबल होता है, उससे जहांगीर बोलता है कि वो पढ़ के उसको सुनाए कि उसका मतलब क्या है, क्योंकि जहांगीर तो पढ़ा लिखा नहीं था। तो वो दरबारी को बोलता है और दरबारी जो है वो पहले से बिका हुआ होता है थॉमस के द्वारा। तो जहांगीर उस दरबारी पे विश्वास करके उस पे हस्ताक्षर कर देता है ट्रेड लाइसेंस पे, और ट्रेड लाइसेंस का मतलब होता है लूटमार की इजाज़त मांगना। तो अब अंग्रेज़ हमारे इंडिया में कहीं पे भी अपनी मनमानी तरीके से लूटमार कर सकते थे और कारखाने अपनी मर्जी पे कितने भी खोल सकते थे। तो इसी तरह जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो हमारे इंडिया में आके अपना पूरा वर्चस्व स्थापित करती है और अपना जो भी प्रॉफिट करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए जिस तरीके से वो लूटना चाहती है हमारे देश के लोगों को लूट सकती है। सो इस तरीके से अंग्रेज़ हमारे देश में आते हैं और अपना पूरा राजस्व स्थापित करते हैं, अपनी मनमानी तरीके से हमारे ऊपर अपना दबाव बनाते हैं, हम सबको लूटते हैं और हमारे देश का जो सोना होता है वो अपने इधर लेके चले जाते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में और डीप में इकोनॉमी के बारे में मेनली मैं बताऊंगी आपको अपने पॉडकास्ट में, जो कि एक सीरीज़ में होगा। और मेरी हर एक पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और मुझे फॉलो भी करना। थैंक यू। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी उसको दिखाने के लिए हमारी इंडिया को 6 भागों में बांटा गया। सबसे पहला था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसको कृषि क्षेत्र बोलते हैं। फिर दूसरा था हमारा देश की जननांकीय रूपरेखा। जननांकीय रूपरेखा से हमारा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कैसा था, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसीज, यही सब आता है। और थर्ड है हमारा औद्योगिक क्षेत्र की दशा, मीन्स इंडस्ट्रियल एरिया कैसा था वो, व्यावसायिक ढांचा और भारतीय विदेशी व्यापार की दशा कैसी थी, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना कैसी थी, मीन्स हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र की। उस समय जो कृषि क्षेत्र था वो इतना प्रोडक्टिव नहीं था। इसके बहुत से रीजंस थे, जैसे कि जो लैंडलॉर्ड थे और जो वहाँ के किसान थे उनके बीच में बहुत बड़ी खाई थी, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड था वो कभी भी अपनी खेती पे इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। जो जोतने वाले होते थे उनको उस पर खुद निवेश करना होता था, अपना पैसा उनको खुद लगाना पड़ता था। जैसे उनको कीटनाशक, बीज, इन सब में पैसा लगाना होता था, तो उसमें लैंडलॉर्ड उनकी मदद नहीं करते थे, बस उनको अपनी अर्निंग से मतलब होता था कि जो उनकी अर्निंग है वो कैसे करके बढ़ जाए। और जो हमारी कृषि थी वो उस टाइम पे भी मौसम पे ही आधारित थी, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी। और उस समय जो किसान थे वो कृषि जीवन निर्वाह के लिए करते थे। उनका एम ये नहीं होता था कि वो ज़्यादा फसल उगाए और उसको मार्केट में बेचे। इसकी वजह से जो कृषि थी उसकी उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा कम थी। ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने के बाद कृषि की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्होंने भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की, इंग्लिश में लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसमें होता ये था कि जो ज़मींदार है वो किसान से कितनी भी रकम ले सकता था टैक्स के तौर पे, और उसमें से एक निश्चित राशि, मतलब एक सर्टेन अमाउंट वो गवर्नमेंट को देता था, और जो बचा उनको मिलता था वो ज़मींदार अपने पास रख लेता था। तो वो किसानों से कितनी भी राशि ले सकता था, उसको खुली छूट थी। इससे और ज़्यादा किसानों का शोषण होना शुरू हो गया। पर अंग्रेज इतने से भी नहीं रुके, उन्होंने कृषि का व्यापारीकरण कर दिया। व्यापारीकरण से मतलब ये है कि कृषकों को उन्होंने ये कहा कि उनको जीवन निर्वाह के लिए जो फसलें होती है, ये चावल और गेहूँ, उसकी जगह पे ऐसी फसलों को उगाना है जिसका ट्रेड कर सके। जैसे कि हमारा हो गया कपास, जूट और नील, ऐसे ऐसे फसलों को उगाने के लिए कहा गया। तो इससे इसका बुरा परिणाम ये हुआ कि किसान पहले जीवन निर्वाह के लिए खेती करते थे, तो उससे उनका भरण पोषण तो हो जाता था। वो अपने घर में सभी लोगों का पेट तो भर देते थे, पर अब ऐसा होता था कि उनको चावल, गेहूं, ऐसी ऐसी फसलों को, मतलब ऐसी फसलें अब वो उगा नहीं रहे हैं, तो अब उनको खाना तो है ही, पेट तो फिर भी भरना है। तो इसके लिए उनको मार्केट जाना पड़ता था और मार्केट से उनको ख़रीदना पड़ता था, और ख़रीदने के लिए उनके पास रकम नहीं होती थी। तो इस वजह से उनका और ज़्यादा शोषण हो गया। अब उनके पास खाने के लिए खाना, मतलब अन्न भी नहीं होता था। पहले वो उगा के तो खा लेते थे, पर अब उनको उसको ख़रीदना पड़ता था, और जिसके लिए उनके पास पैसा नहीं होता था। ब्रिटिश शासन के आने से पहले हमारा जो देश था वो हैंडक्राफ्ट के लिए पूरे के पूरे विश्व में मशहूर था। हैंडक्राफ्ट में ऐसे चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है जिस चीज़ को बनाने के लिए मशीन की ज़रूरत नहीं होती, वो चीज़ें हाथ से बनी जाती है। जैसे हमारे इधर सिल्क की साड़ियाँ बनाई जाती थी, और बहुत सी चीज़ें बनाई जाती थी जिसमें सिर्फ हाथ की, मतलब हाथ की कला कह सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ट्रेड किया जाता था इंडिया से पूरे विश्व में, और इसके लिए इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस भी था। पर ब्रिटिशर्स ने इसको रोक दिया। ये जो हमारी इंडस्ट्री थी उसको रोकने के लिए, मतलब बंद करने के लिए, उन्होंने बहुत सी नीतियाँ अपनाई, मीन्स पॉलिसीज अपनाई, और बहुत सी स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई। उन्होंने ब्रिटिशर्स के इंडिया आने से पहले हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो पूरे विश्व भर में फेमस था। पर ब्रिटिशर्स ने बहुत सी स्ट्रेटजी ऐसी बनाई जिससे हमारी जो ये इंडस्ट्री थी उसको बहुत सी इफ़ेक्ट्स पड़े, और इसकी वजह से बंद हो गया। उन्होंने अपने ब्रिटेन में जो उद्योग लगाए हैं उसके लिए कच्चे माल के रूप में इंडिया का यूज़ किया। इंडिया से वो सब के सब कच्चा माल इंपोर्ट करते थे ब्रिटेन में, और फिर वहाँ से फाइनल गुड्स उसी का बना के हमारे इंडिया में उसको एक्सपोर्ट कर देते थे। और इसके लिए वो सब के सब आयात और निर्यात जो शुल्क लगते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे जो टैक्स लगता है, उसको भी उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया था। और जो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम बाहर विश्व में भेजते थे उस पर इन्होंने बहुत ही भारी टैक्स लगा दिया था। तो इसकी वजह से ये हुआ कि जो लोग हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड कुछ बनाते थे वो सब के सब डीमोटिवेट हो गए, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा था। और वो सब के सब रॉ मटेरियल बनाने में और मतलब उसी को ब्रिटेन एक्सपोर्ट करने में इसी चीज़ में लग गए। और ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे देश में राजशाही शासन हुआ करता था, और वो सब की सब हमारी इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन देते थे। पर जब राजशाही शासन का विनाश हुआ, ख़त्म होने लग गए, तो इसके वजह से प्रोटेक्शन मिलती थी हम सबको, वो सब भी बंद हो गई मिलनी। और जब ब्रिटेन से चीज़ें आने लग गई मशीन से बन बन के हमारे इंडिया में बिक्री के लिए, तो हमारी इंडिया की हमारी जो इंडियन चीज़ें थी जो हमारी इंडिया में बनती थी उनका उनके साथ कंपटीशन होना शुरू हो गया। और मशीनी चीज़ें ज़्यादा सस्ती मिलती थी क्योंकि मशीन से चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बन जाती है और उसमें इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता। और हमारी इंडियन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती थी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, क्योंकि हम सब सब बिना मशीन की मदद से अपनी हाथ से बनाते थे। तो इन दोनों को कॉम्पिटिशन हो गया और लोग किस चीज़ को ख़रीदेंगे, जो चीज़ सस्ती मिलेगी। तो ब्रिटेन की जो चीज़ें थी वो सस्ती मिलती थी, इसकी वजह से जो हमारे इंडियन लोग थे वो सब के सब ब्रिटेन वाली चीज़ें ही खरीदते थे। अब हमारे इंडिया में लोगों को वेस्टर्न कल्चर का वो लग गया था, क्या बोलते हैं, शौक लग गया था, सबके सब वेस्टर्न कल्चर अपनाने लग गए थे। क्योंकि अब अंग्रेज सब भी अपनी कल्चर को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर चुके थे, तो इसकी वजह से सबके सब अब वेस्टर्न कल्चर की जो चीज़ें होती है, मतलब जो भी चीज़ें होती है उन सब की कल्चर से रिलेटेड, उन सब की मांग करना शुरू कर चुके थे। तो इसकी वजह से हमारी जो इंडियन चीज़ें थी, हमारा इंडियन कल्चर था, उसका विनाश होना शुरू हो गया था। और हमें ये पता है कि जो अंग्रेज है वही सबके सब हमारे इंडिया में रेलवे लेके आए थे। तो रेलवे ने भी जो ब्रिटिश से चीज़ें बन बन के आती थी उसको हर जगह तक पहुंचाने में बहुत सहायता की, पर जो हमारी इंडियन चीज़ें थी वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। तो इसकी वजह से मतलब हमारी जो इंडस्ट्री थी उसको बहुत ही ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ता था, और जो ब्रिटेन की चीज़ें थी वो आराम से बिक जाती थी और लोगों तक आराम से पहुँच जाती थी सस्ते दामों पर। प्राचीन काल से ही हमारा जो देश है भारत, उसको विदेशी व्यापार में बहुत ही उत्तम स्थान प्राप्त था। पर ब्रिटिश शासन के आने के फलस्वरूप हमारा जो स्थान था विदेशी व्यापार में वो कम होने लगा। हमारा देश पहले बारीक कपास, रेशमी कपड़ा, लोहे की बनी वस्तु, लकड़ी की बनी वस्तु, हाथी के दांत, मूल्यवान रत्न, इन सब का एक्सपोर्ट करता था और इन्हीं सब पे ट्रेड करता था फॉरेन कंट्री से। पर ब्रिटिश शासन के आने के बाद ये सब नष्ट हो गया। इसके क्या रीजंस थे ये मैं बताती हूँ आपको। हमारा देश जो प्राथमिक उत्पाद होते हैं, जो प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, उसको प्राथमिक प्रोडक्ट में, मतलब प्राथमिक उत्पाद में सम्मिलित किया जाता है, उसका वो निर्यातक बन गया, ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट करना उन्होंने शुरू किया हमारे देश ने। और जो तैयार उत्पाद होते हैं, तैयार उत्पाद में मतलब जो पूंजीगत वस्तुएं होते हैं, मतलब कैपिटल कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरी, ये सब हो गए, ये सब इंग्लैंड में बनती थी और हमारे देश को खरीदना पड़ता था उसे, मतलब इन सब का इम्पोर्ट होता था। और बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती थी जो कि हमारे ही देश से गई होती है रॉ मटेरियल के तौर पे, और उसका वो सब के सब फाइनल गुड बनाते थे और हमारे देश में ही उसको बेचते थे। और अब जो भारत था वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के साथ ही आयात और निर्यात करता था। जो ट्रेड था वो हमारा 50% से भी ज़्यादा जो था वो हमारे ट्रेड ब्रिटिशर्स के साथ, मतलब ब्रिटेन के साथ होना शुरू हो गया था। बाहर से देखने में तो ऐसा लगता था कि हमारा देश जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, तो ये अच्छा है हमारे लिए, मतलब सरप्लस आ रहा है, क्योंकि जो हमारा इम्पोर्ट था वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा, सॉरी, जो हमारा एक्सपोर्ट था वो इम्पोर्ट से ज़्यादा था। मीन्स हमारा जो सरप्लस है वो बच रहा था, पर इसका जो फ़ायदा था सरप्लस का, वो सारा का सारा अंग्रेजी लोग जो थे वो सब के सब उठा रहे थे। और उस टाइम पे जो वॉर्स होते थे उस पे वो सब के सब उस पैसे को खर्च करते थे, और अपने भोग विलास, मतलब अपने ही खाने पीने में उस पैसे को खर्च करते थे। उस पैसे को कभी भी उन्होंने हमारे देश की तरक्की पे नहीं लगाया। अब आते हैं हम अपने जनांकीय रूपरेखा, मीन्स डेमोग्राफिक प्रोफाइल पे, जो कि ब्रिटिश शासन के टाइम पे कैसी थी। उस टाइम पे जो जन्म दर था और मृत्यु दर था, मीन्स जो बर्थ रेट और डेथ रेट था, वो दोनों की दोनों बहुत ही ऊंचे लेवल पे था। मीन्स लोग बहुत ही ज़्यादा मर भी रहे थे और बहुत ही ज़्यादा लोग जन्म भी ले रहे थे, मतलब बच्चे जन्म भी ले रहे थे और लोग मर भी रहे थे, जो कि लगभग 48 से 40% था, मतलब प्रति हज़ार पे 48 से 40% लोगों का जन्मदर और मृत्यु दर था। और ये हमारे देश की निर्धनता की व्याख्या करता है, क्योंकि लोग इतनी ज़्यादा मर रहे हैं, मीन्स हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है इसीलिए, और निर्धन लोग ही जो होते हैं वो ज़्यादातर मतलब बच्चों को पैदा करने में और इन सब चीज़ों में, मतलब ज़्यादा जो जनसंख्या होती है वो निर्धनता की निशानी होती है। तो इस वजह से ये जो था वो निर्धन होने का हमारा एक संकेत था, साइन था। और जो शिशु मृत्यु दर्द था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो ही बहुत ही ज़्यादा था, वो लगभग 218 प्रति हज़ार बच्चों पे था। मीन्स 1,000 बच्चों पे 218 बच्चे मर रहे थे, 1,000 बच्चों पे 218 बच्चे मर रहे थे। ये भी निर्धनता की एक निशानी होती है। उस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसीज, मतलब जीवन प्रत्याशा, सिर्फ 32 वर्ष की होती थी, मीन्स 32 ईयर्स की, जबकि अब वर्तमान में 63 है, बढ़कर हो गई है। ये भी हमारे स्वास्थ्य सुविधा इन सब के बारे में संकेत देती है कि उस टाइम पे कितनी घटिया हमारी स्वास्थ्य सुविधा हुआ करती थी, कि 32 वर्ष की उम्र में ही लोग मर जाते थे। हमारे देश की साक्षरता दर सिर्फ 16% थी, जो लोग लिख पढ़ सकते थे वो सिर्फ 16% थे पूरे देश के। अब आते हैं हम अपने स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे व्यावसायिक ढांचे की कैसी स्थिति थी। व्यावसायिक ढांचे से इसमें मतलब है कि जो कार्यशील जनसंख्या थी हमारे देश की, वो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में किस तरह वितरित थी, मतलब किस तरह वो प्राथमिक क्षेत्र में काम करते थे, द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में, मतलब कितने कितने लोग इन तीनों क्षेत्र में लगे हुए थे। इंडिपेंडेंस के समय हमारे देश के 72.7% जो कार्यकारी जनसंख्या थी वो कृषि क्षेत्र पे लगी हुई थी, जबकि विश्व के जो बहुत अच्छे अच्छे देश थे, जैसे हमारा हो गया इंग्लैंड तथा अमेरिका, उसमें सिर्फ 2 से 12% लोग ही कृषि क्षेत्र पर निर्भर थे। 2, 4, 12 ऐसी, मतलब जर्मनी में 4% लोग ही कृषि पर निर्भर थे। इससे स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी ज़्यादा पिछड़ी हुई थी। और इंडिपेंडेंस के समय हमारे भारत की जो कार्यशील जनसंख्या थी, मतलब जो कार्य कर रही थी, उसमें केवल 9% जो लोग थे वही उद्योगों पर निर्भर करते थे, मतलब उद्योग उद्योग में काम करते थे, निर्माण वाली चीज़ों में काम करते थे, खनन में काम करते थे। इसके विपरीत जो यूएसए था उसमें 32% और इंग्लैंड में 42% और जापान में 39% जनसंख्या इन क्रियाओं में लगी हुई थी। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा देश कितना ज़्यादा पीछे था। हमारे देश में जो 72% जनसंख्या थी वो कृषि क्षेत्र पे ही लगी हुई थी, और विकसित देश उस देश को माना जाता है जहाँ पे जो तीनों की तीनों क्षेत्र हो, उन तीनों का अच्छे से विकास हुआ हो। पर हमारा जो देश था उसमें सिर्फ कृषि क्षेत्र का ही विकास भी नहीं था, बस कृषि क्षेत्र पे लोग लगे हुए थे, उस विकास भी नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि हमारे देश में पेशेवर लोग नहीं थे जो पढ़ने लिखने में ध्यान लगाते हो, ऐसे लोग भी थे जो कि मद्रास, महाराष्ट्र, बंगाल और ऐसे मतलब यहाँ के लोग जो थे वो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, मतलब जो सेकेंडरी और हमारे टेरिटरी जो क्षेत्र है उसमें, टेरिटरी जो सेक्टर है उसमें लगे हुए थे। और जो उड़ीसा हो गया, राजस्थान, पंजाब, ये सब के सब जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसमें लगे हुए थे, उस पर निर्भर करते थे। और जो हमारा महाराष्ट्र और बंगाल था वो तो बहुत ही ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र और व्यापार में मतलब निखर के दिखाई दे रहा था इंडिपेंडेंस के टाइम पर। अब हम बात करते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। तो आधारित संरचना से अभिप्राय है कि ऐसी संरचना जो हमारे देश के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जो हमारे देश की विकास की एक नींव है, और इसको मतलब आर्थिक परिवर्तन के रूप में भी माना गया है, जैसे यातायात साधन, बैंकिंग, शक्ति, ऊर्जा मतलब बिजली हो गया हमारा, संचार हो गया मतलब जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो मोबाइल फ़ोन के द्वारा ये सब, और सामाजिक परिवर्तन में हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास सुविधा, ये सब आता है। तो ये जो सब की सब है, ये सब की सब मिल के हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये हमारा उस टाइम पे कैसा था, हम इस तथ्य को नहीं नकार सकते कि जब ब्रिटिश शासन आया तो उस टाइम पे जो हमारा यातायात और संचार के जो क्षेत्र थे उसमें विकास हुआ था। भले ही विकास उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए किया था, बट उन्होंने विकास किया था। वो रेलवे लेके आए थे जिसे बहुत ही ज़्यादा संचार हुआ था, और यातायात का ये बहुत ही अच्छा साधन बना था। साथ ही डाक डाक तार और कुछ एक बंदरगाह, सड़कों का निर्माण भी हुआ था। पर ये सब के सब उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए किया था, और ये सब के सब मतलब इतनी ज़्यादा गति से नहीं हो रहा था जितनी गति से ये हो सकता था। मतलब ये बहुत ही जल्दी ये प्रोसेस हो सकता था, बट इतनी जल्दी ये हुआ नहीं। रेलवे का विकास ब्रिटिशर्स ने इसलिए किया क्योंकि वो अपने सामान को इधर से उधर नहीं भेज पा रहे थे, इसलिए उन्होंने रेलवे का विकास किया। सड़क का भी विकास उन लोगों ने इसलिए किया क्योंकि वो अपने मतलब सामान को इधर से उधर भेज सके, जिससे वो मतलब अपने सामान को कोने कोने तक भेज सके और लोग सब उसको खरीद ले। और बंदरगाह का उन्होंने निर्माण इसलिए किया क्योंकि जिससे वो कच्चे माल को ब्रिटेन भेज सके, और ब्रिटेन से मतलब तैयार माल को इंडिया में ला सके। इसलिए उन्होंने बंदरगाह का भी विकास किया, मतलब बंदरगाह बनाए उन्होंने अलग अलग जगह पे। और डाक तार का निर्माण उन्होंने इसलिए किया जिससे उनका जो प्रशासन था वो बहुत अच्छे एफिशिएंसली हर जगह चल सके, इसलिए उन्होंने डाक तार का भी निर्माण किया। तो उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इस टाइप का था। अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिश शासन का सही में कोई सकारात्मक मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे इंडिया में पड़ा था। वैसे सीधे तौर पे इसका आंसर तो है नहीं, पर इनडायरेक्टली उन्होंने हमारे लिए कुछ कुछ अच्छे काम भी किए। ब्रिटिशर्स जब आए तो भी उन्होंने कमर्शियल एग्रीकल्चर का मतलब कमर्शियल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया, मतलब व्यापारिक कृषि का, जिसमें जो कृषि थे वो सब के सब ऐसे उत्पादों का उत्पादन करते थे जिसको वो बेच सके। तो इससे वो सब के सब ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे, भले ही मतलब इससे उनकी आत्मनिर्भरता को एक चुनौती मिली थी, पर इससे उनका एम ये हुआ कि वो अब प्रॉफिट कमाने के लिए मतलब अब वो आगे की सोचने लगे थे। उनका सिर्फ एम ये नहीं था कि सिर्फ अपने घर का भरण पोषण हो जाए, अब वो आगे की सोचने लगे थे, और इससे जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी वो भी बढ़ी थी। और रेलवे सड़कों का निर्माण, इससे जो हमारे आर्थिक और सामाजिक विकास के बहुत से नए अवसर खुल गए, जिससे देश के विभिन्न भागों में सांस्कृतिक संबंध भी अच्छे बने। मतलब लोग इधर से उधर अब जा सकते थे, बातचीत कर सकते थे, तो जो सांस्कृतिक संबंध थे वो भी अच्छे बन गए। और यातायात के जो साधन थे मतलब ब्रिटिशर्स की वजह से अच्छे हो गए थे, तो जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ते थे, खाना इधर से उधर नहीं जा पाता था, अब वो कम होने लगे थे, क्योंकि अब जो यातायात इतना अच्छा हो गया था, तो हम जो खाना था वो इधर से उधर आराम से कम समय में भेज सकते थे। सूखा ग्रस्त इलाका होता है गर्मी के टाइम पे, जो इलाका बहुत ज़्यादा सूख जाता है, गर्मी के टाइम पे भी नहीं, मतलब ऐसे ऐसे जगह है जो सूख जाते हैं, तो वहाँ पे भी जो खाद्य सामग्री थी वो बहुत जल्दी आसानी से पहुँच जाती थी, क्योंकि यातायात साधन अच्छे हो गए थे। और जो सबसे अच्छा बदलाव हमारे इंडियन इकोनॉमी में हुआ वो ये था कि पहले के टाइम पे जो लोग थे वो बटलर सिस्टम, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल करते थे, वस्तु के बदले में वस्तु लेते थे। पर अब जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने मुद्रा विनिमय प्रणाली का अपना लिया था, मतलब अब जो वो कुछ भी खरीदते थे तो उसमें मुद्रा का आदान प्रदान होता था, तो इससे जो हमारी इकोनॉमी थी वो अच्छी हुई थी। और ब्रिटिशर्स ने जो श्रम विभाजन होता है, मीन्स कि इतने लोगों के लिए इतना खेती है, मतलब जिसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, उन्होंने मतलब अपने एम के लिए ही किया था ये सब, पर इससे जो हमारी इकोनॉमी थी वो अच्छी हो गई थी, तो हम इन सब चीज़ों को नहीं नकार सकते हैं जो अच्छा हुआ था। तो लास्ट ही पॉडकास्ट में मेरा बस यही है आज, मतलब ये पूरा मेरा सीरीज़ ख़त्म हो रहा है अब।